హరే కృష్ణ 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 హరే రామ హరే రామ 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 హరే.
वो जो है ना ऐश्वर्य में नारायण की सेवा है, जब तुलना वो बहुत ऊंचा है, वो किंतु उससे भी बहुत ऊंचा है ये राधा कृष्ण का प्रेम। वो स्वयं लक्ष्मी जी भी रात में सम्मिलित होना चाहती हैं, और सब कुछ बात किया।
जब आपके जब आप आते हैं ना, और ही कुछ सबके भाव ऐसे होते हैं ना, उसमें जब अभी जैसे सबके भाव
हमारे और महाराज में फर्क नहीं है, तो फर्क है वैसे भी, तो फर्क है ना, कीर्तन में फर्क नहीं है ना,
आपको किस लिए ले आए जानती हैं, किस लिए बुला करके ले आए? आपके प्रति कितना स्नेह है,
कभी आप ही कैसे
समझते हैं बात कुछ होती सारी लोगों को जो कष्ट है उन्हीं को, बुरी चीजें उन्हीं को सुख मानता है। आज जो यथार्थ सुख है, हम चलो जिसको लाखों करोड़ों वर्षों में अनुभव किए, क्या ऐसे दिन देखा जैसे कर्दम ऋषि उनकी पत्नी कौन थी, वसुदेव की माता अपने जमाने की विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों में से सर्वोत्तम थी,
मनोबुद्धि
सबसे सुंदरी, विश्व में उनके लिए बड़ ढूंढा जा रहा था। कर्दम केवल एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे किंतु वो शादी करेंगे नहीं, पत्ते क्या करेंगे, सब लोग गए ब्रह्मा जी के, आपकी बात नहीं ना तो छोड़ कर तो किसी की बात नहीं, आप शादी नहीं तो बेचारी शादी कर दिया। उसने भी उनसे बहुत अन्य के नहीं किया, किसी की बात नहीं, ब्रह्मा जी ने कहा अरे मन को शिक्षा विवाह करने से और नहीं करने से कुछ नहीं होता, विवाह करके तो कितने कितने भगवान को पाए हैं, इसे यदि तुम हमको खुश करेगा विवाह करके तो हम तुम्हें ऐसा वर देंगे महाराज जी, और अद्भुत अद्भुत चमत्कारी चीजें उनको दिख रहा है। करोड़ों करोड़ ऐसे राजभवन बनाए जो इंद्र को देख करके कहां कैलाश, कहां कहां सुंदर रमणीय घाटियां, कहां कहां उनको ले गए, सब दिखला किस लिए, समझे उसकी इच्छा थी देव होती सब जगह देव, ऐसे स्थानों में ले गए और वहां पर उसके साथ में अपना दिल बहलाया। अंत में उन्होंने कहा कि एक शर्त है हमारा, जहाँ हमारा पुत्र हो जाएगा एक, उस समय संसार को छोड़ दें जब तक पुत्र नहीं होगा, और उसमें तुम रियलाइज करेगी ये संसार क्या है, ये जो सुहावना संसार दिखता है उस तुम इसको रियलिटी समझ जाएगी, तुम्हारा पुत्र ही तुम्हें बतला देगा और समझा देगा और 25 दिन के बाद में, जिस 25 वर्ष के बाद में या सैकड़ों वर्षों के बाद में उनको कपिल जी भगवान के रूप में अब नहीं चाहिए। अब तो मैं घर जाता हूँ, पर मैं अब तपस्या करने जाता हूँ, मैं किसको लेकर के रहूंगी? मुझे तुम्हारा पुत्र, वो तो चले गए। अब कपिल देव जी ने उनको श्रीमद् भागवत में बतलाया है, कहाँ सुंदर संसार क्या चीज है, नरक का कुंड है, दिखता है बड़ा सुंदर सुहावना, किंतु जब थोड़ी सी आंख प्रसारित करके जब आगे देखते हैं, जलता हुआ ये जो इसके तरफ में लपकता है, जो सावधान होकर के चलता है संयम से और भगवान का गुणान बात करते हैं, हृदय को निर्मल करते हैं, अजर अमर होकर के वैकुंठ और ये सब पृथ्वी का ऐश्वर्य कितना बड़ा और पति और सौंदर्य क्या है, अनंत काल के लिए परम सुंदर ऐसा बन जाता है या बन जाती है, जो वृंदावन की भूमि है जमुना कल कल बह रही है, वहां पर मोर केका केका कर रहे हैं, धीर समीरे जमुना की जय, सत्य समीर बनना की जय, उनका पिछले यार बड़ा सुंदर उस समय का था, जयदेव और उनकी पत्नी पद्मा जी का उन्होंने वर्णन किया वृंदावन का, वो वृंदावन में जन्म होगा और सब समझेगा देखेगा, जैसे सौंदर्य किसको कहते हैं, कृष्ण का सौंदर्य, गोपियों का सौंदर्य, समस्त गोपियों में श्रीमती राधिका जी का सौंदर्य, राधिका और कृष्ण को खड़ा कर दिया जाए ना तो कभी मालूम होता है ये कृष्ण ही बड़े सुंदर हैं, कभी भी राधिका जी सुंदर हैं, अद्भुत, वहाँ पर कोई सौंदर्य कोई गुण कोई भी कुछ नहीं, और वो कैसा है, दिन रात वर्तमान करता है, एक छटा उसकी यदि देख लेना कोई, एक पहलवान था बाकी गुंडा नंबर एक छटा हुआ पहलवान, वो रहता था त्रिक्षणापल्ली में जहाँ पर रंगनाथ जी का मंदिर है ना, शहर के जितने लोग थे सब थर थर कांपते थे इस गुंडे के बारे में, उसकी एक अविवाहिता स्त्री से प्रेमी थी, वो गुंडागरी करते हुए उसको रख लिया और उसके पास में रहता था और इतना स्नेह करता था जो 24 घंटा उसका मुख देखता था, कहीं जाने चाहती थी वो स्त्री उसकी तो वो आगे आगे जा रही है ना, ऐसे इधर नहीं वो पीछे फिर करके उसको पीछे पीछे चलता था और पीछे से छत्ता लगा देता उसको, न लज्जा आती थी न कुछ भी आता, लोग का भय न लज्जा न कुछ, यदि किसी ने चू कर दिया तो जान से मार डाल, इतना भयंकर उनका पहलवान भी वैसा था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि हम उनका दर्शन करेंगे,
रंगनाथ
जी क्या दर्शन करेगी, कहा नहीं हम दर्शन, तो उसकी छोटी छोटी इच्छाओं का भी बड़ा आदर करता था, तो कहें तो चलो, तो चलने लगी तो वो वैसे ही आगे होकर के और पीछे से पीछे पीछे चल रहा है, छत्ता पकड़ रखा है, लोग देख रहे हैं, देखो तो ये खड़ा आदमी थी, मंदिर में पहुंचा, वो दरवाजे के पास में पहुंची दर्शन करने के लिए, तो ठाकुर जी का घर यहाँ है ना, तो वो तो आकर के खड़ी हो गई, वो पीछे दरवाजे पर खड़ा हो गया, पीछे 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 करके उसको देखने लगा, लाखों लोग वहां पर दर्शन करने के लिए खड़े, किसी की हिम्मत नहीं जो कहे तो भाई दरवाजा से तो भले मानस तुम हट करके खड़े हो, समय भी हो गया मंदिर खोलने के लिए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, जैसे ये पीछे के ये खड़ा है तो मंदिर तो खुला नहीं जा सकता है, अंदर तो वो हट करके आए, खबर दी गई रामानंद से, रामानंद पर आगे आगे आप वहां पर खड़े हो, मंदिर है तो क्या है उसमें क्या है, तो तुम्हारी जो स्त्री है वो किसको देखने के लिए आई है, वो तो किसी को देखने के लिए आए, उसको तुम भी तो देखो। उन्होंने कहा ये नहीं, तुम अपना जन्म सफल करना चाहता है तो वो पत्थर की मूर्ति में क्या रखा है, इसका मुख देखो ना, तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। देखो कि इसमें कितना रखा है, कितनी सुंदरी है। उन्होंने कहा कि यदि तुमने एक बार भी उनका दर्शन कर लिया तो इसको तरफ में तुम घृणा तुम्हारी हो जाएगी, तुम देखेगा नहीं जन्म का, झूठ बोलते हो। कहने में मैं सच बोलता हूँ, तुम्हारी अनुभूति नहीं। अच्छा तो यदि नहीं दिखाओगे तो तुम्हारी जो इच्छा मुझे दंड देना, और यदि मेरी बात सत्य हो जाएगी तो मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा, शिष्य बन जाऊंगा, जो आप कहेंगे वही करूंगा। ठीक, तुम अच्छा इधर आओ। और तुमसे कहने से मंत्र मुग्ध होकर के एकदम चलाया, यहाँ पर जो स्थिति खड़ी थी वो घर से खड़ा है, मंदिर का दरवाजा खुला, आरती होने लगी। किसम का कुछ नहीं बोला, जब आरती समाप्त हुई तो बोला रामानी से, यही पत्थर देखने के लिए कह रहा था, अरे जरा इधर देखो, ऐसा तुमने जीवन भर में नहीं देखा होगा। हम अरे तुमने देखा नहीं कुछ ऐसा, उसके सिर पर थोड़ा सा हाथ रखा, ये देखो तो देखते ही आंखों से आंखों की धारा बह चली और एकदम अपने हाथ से उसको क्या करते थे उसको खाए। अब तो ठाकुर जी की तरफ में देखते ही एक तक उस पर अब इसकी भूल गया, जैसे हमारी वो हमारी प्रेमिका है, हमारी अर्जी है, सब एक रमन जी का, जैसे अब इसके तरफ में देखो, बस उनके चरण पकड़ लिया, इतना सुंदर। अब उनका उनसे शिष्य हुआ, थोड़ी देर के बाद देखा कि दृश्य गायब हो गया, वो पत्थर जैसा दिखाई देना, तो अब तो हमको वो दिखाई नहीं देता। इसके लिए देखा साधन भजन करना होता है, ऐसे नहीं होता है, साधन करो। मैंने तुमको स्पर्श कर दिया, मैं सब तुमने देखा, हमने शक्ति तुम्हारे अंदर में संचित, सब देखो ये जैसा वो सुंदर जगत के लोगों को या ऐश्वर्य माधुर्य और सौंदर्य उन लोगों को घृणित चीजें जो मरने वाली है, जो कीड़े जिसमें बन जाते हैं। अभी ये सौंदर्य अभी कितने दिन का है, 5 साल का, इसके बाद में क्या होगा, झुरी जब पड़ेगी तो कोई पूछेगा नहीं, यही तो जगत का रूप है। दो बार दांत टूट जाए ना, दो दांत सोने का लगा लो, कितने दिन तक लगाओगे, जब हजम नहीं होगा तो फिर दुबले पतले सुख करके ऐसे बनिए बदरूप हो जाएगा। ये जगत का ये परिणाम है, ये इसलिए हम लोग सोचते हैं, किंतु हमारे अंदर में एक ऐसा सुंदर रूप है, इतना सुंदर रूप है जो कृष्ण कुछ नहीं, ऐसे नहीं। कुछ पैसे कमाने के लिए दिन रात पैसा करना पड़ता है, परिश्रम में सब कुछ छोड़ देना पड़ता है उस पैसे के लिए, यहाँ तक सील लज्जा सब कुछ छोड़ करके, राजा घर के लड़के होकर के भी कहाँ पर नौकरी, डोम की यहाँ नौकरी करना पड़ता, हरिचंद्र को करना पड़ा ना। तो वैसे जब भी हम हमारे अंदर में एक बड़ा ही सुंदर रूप है और वो कभी भी मरेगा नहीं, जन्मता नहीं, ऐसा सुंदर रूप है, ऐसा वो है जिसके लिए व्यास जी ने हजारों वर्ष तक तपस्या की, ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं। अभी मीराबाई का अभी उदाहरण देते हैं, तुलसीदास जी झूठे नहीं थे, वो कहते हैं काम ही नारी प्यारी जिन, इनके कहा काम ही नारी प्यारी जिन, लोभ ही प्रिय जिन दान, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिया ला बहु मोहि। कामी को जैसे प्यारी इसकी इसकी होती है, पत्नी होती है या प्रेमिका होती है, ऐसे भगवान के राम के चरणों में हमारा लोभी, लोभी को जैसे कि दाम प्यारा होता है, यानी पैसा, एक पैसा जोते 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 खर्च नहीं करेगा या खर्च करेगा अपने स्वार्थ के लिए, ऐसा ही भगवान के चरणों का। तुलसीदास को चैतन्य महाप्रभु क्या जरूरत थी संसार छोड़ने को, हमारे और सब ऋषि महर्षि हो गए, क्या जरूरत थी लाखों वर्ष तपस्या करने की? देखा जैसे ये सब तो बिखर जाएगा, दुनिया बिखर जाएगी। हम जिस काम के लिए आए थे वो काम हुआ, अंत में खाली हाथ नंगे हाथ पैर इस जगत से चला जाना पड़ेगा और इसको भी आग में जला देंगे। इसलिए हम जगत में ठोस कोई चीज लेकर बहुत बड़ी भारी चीज लेने आए हैं, जो उसे वंचित हो जाता है वो लाखों करोड़ों वर्षों तक के लिए वंचित। यदि मनुष्य जीवन में नहीं यदि पाया उसका करोड़ों करोड़ जन्म, हम लोग मूर्ख नहीं थे, ब्रह्मा जी मूर्ख नहीं, और हमारे संत लोग जो लाखों करते कुछ पाया, जैसे व्यास जी ने समाधि नेत्र में उन्होंने देखा हजारों बार तपस्या करने के बाद में कृष्ण की समस्त लीलाओं को देखा, तुलसीदास जी ने वाल्मीकि जी ने देखा तब तो वर्णन किया। इसलिए जीवों को सहज रूप में पहले विश्वास, जो देखते हैं उसी में विश्वास। किंतु ये सब चीजें क्या है, ये छायाबाजी है, छायाबाजी मानी जानते हैं वो इंद्रजाल होता है ना, जब जैसे मैजिक, ये मैजिक जब मैजिक एक कथा सुनाते हैं भागवत में लिखा है मैजिक इस प्रकार। भागवत में ऐसे श्लोक की टीका में भी सुना चक्रवर्ती ठाकुर जी ने, कृष्ण जब गए ना जगत से तो बहलिए ने बाण मारा और बाण उनके पैर में लगा और उससे कृष्ण जगत को उसको व्यस्त करेगा, ऐसा कुछ महाभारत में वर्णन भागवत में नहीं है। और उसी श्लोक की टीका में जो कृष्ण कैसे गए उसमें लिखा, ये एक राजा था उसकी एक पत्नी, उसके हजारों बड़े बड़े युद्ध युद्ध दरबारी थे, सुन रहे ना दरबारी, विशाल दरबार लगा हुआ है, एक एक से गुणी वहां पर बैठे हैं। इतने में एक नट एक नटनी और उसके दो लड़के वहां पर उपस्थित थे। नट जानते हैं तमाशा दिखाते हैं, कुछ जादूगरी हाथ की सफाई ये सब दिखाते हैं। तो वो अभी वो दोनों थे नौजवान थे, पति और पत्नी, और बच्चे थे कोई एक 8 वर्ष का एक 9 वर्ष का, वो खिला दिखाने के लिए आए, रस्सी टांग दी और उसके ऊपर में नृत्य करने लगे। देखा ना वो सन्न सब करते हैं, एक लस्सिया ले लिया और रस्सी के उसके ऊपर में वो जो स्त्री थी उसकी घड़े ले ली, घड़े के ऊपर में घड़ा उसके ऊपर में घड़ा उसके ऊपर में घड़ा ले ली और रस्सी पर चढ़ गई और एक बांस ले लिया और उसके ऊपर में नृत्य करने लगे। और भी तरह की ऐसे ऐसे चीजों को दिखलाया जिससे कि रानी बड़ी प्रसन्न हो गई और अपने गले का हार निकालकर उस नटनी के गले में डाल काफी कम चिंती है। अब दोनों लड़के जो थे साथ में खड़े थे, मैया हमको दे दी मैया हमको दे दी, दोनों ने हार को पकड़ लिया, दोनों बच्चे परस्पर खींचने लगे, वो नटनी ने अपने गले का हार निकाल करके छोड़ दिया और दोनों में जिसको जोर हो ले ले, और ये इसको देती है तो वो समझे इसका पक्ष लिया उसको देते हैं तो वो नाराज होगा, बस बीच में छोड़ दिया और वो दोनों हैं। बस दोनों में रोष हो गया, उसने अपनी तलवार खाई, उसने अपनी तलवार खींच ली और एक साथ दोनों ने तलवार चलाई, उसके गले पर वो लगा उसके गले पर दोनों, हरी हाथ में हमारा लड़का चला गया इस हार के लिए। बस वो जो नटनी थी उसने एक का तलवार उठाया और अपना गला मर गई। इतने में उसका जो पति था उसने हमारे लड़के दोनों गए और हमारी पत्नी गई, उसने फिर तलवार उठाई और हमें कहा जा रही है मैंने ये जो हार दिया यही इनके मृत्यु का कारण था। अब जहाँ आनंद हो रहा था देख करके वहां पर शोक की धारा लगी, बड़ी तकलीफ बड़ी दुखी है, राज्यसभा में ऐसी चर्चा सब गया है। तो जल्दबाद में सोचा रानी अपने घर में दुखी हो गई, आ जा स्थिति प्रकाशित है। दूसरे दिन एक पत्र आया, महाराज आपने हमारी पहली खेल का तो हमको इनाम कुछ दिया, हार दिया, किंतु हमने जो अंतिम खेल दिखलाई इसका आपने कुछ भी पुरस्कार नहीं, हम चारों जीवित हैं। और यदि आपको विश्वास न हो तो आप हमारे घर में आ जाइए, हमारा ये ठिकाना है, हम घर में आपका स्वागत करेंगे। राजा बड़े प्रसन्न हुए, महारानी के पास दौड़े, अरे वो मरे नहीं हैं, वो तो बचे हुए हैं, उन्होंने चिट्ठी दिया, देखो चलो तो जरा देखे। तो बस कुछ दरबारियों को लिया, रानी भी राजा भी और सब लोग मिल करके यह देखने ये बात क्या है, सचमुच में जीत है नहीं झूठ में की बात। तो जब उसके घर के निकट गए तो मुस्कुराते हुए दोनों स्त्री पुरुष और दोनों बच्चे मुस्कुराते हुए, और वही रानी का दिया हुआ हार भी पहने हुए है, और वो बच्चे मुस्कुराते हुए सबका आकर के राजा को और रानी को। यदि इस प्रकार का एक मैजिक करने वाला कलकत्ते का मैजिक मैजिशियन राव सुनकर वो ऐसा किया, एक बार कलकत्ते में वहाँ के गवर्नर थे, उनको टाइम दिया गया कि 4 बजे शाम से मैं आपको कुछ जादूगरी की प्रक्रिया दिखलाऊंगा, 4 बजे आप लोग आ जाए। उन्होंने कहा ठीक 4 बजे आ जाए, हम लोगों का समय कम मिल जाए। बड़ी भरी सभा बैठी थी, 4 बजे आए, 4:30 बजे आए, 5:45 बजे आए, 5 बजे आए, 4:30 बजे आए। अब ये सब लोग बड़े बिगड़े हुए हैं, वो आएंगे तो जरूर कुछ न कुछ दंड देंगे। थोड़ी देर के बाद देखा जे पान खाता हुआ हंसता हुआ वो आ रहा है, जैसे तुम बड़े बेवकूफ हो, तुमको ज्ञान नहीं है यहाँ पर गवर्नर और ये सब बैठे हुए हैं, और तुम 1 घंटा लेट करके आया, लेट करके आया जरा घड़ी देखिए तो कितना बजा है। वो सब लोग देख रहे थे 5, तो वो देखा जैसे 6:40 बज रहा है सबकी घड़ी में, अरे हमने देर कहाँ की, यही से अपना खेल आरम्भ किया। आदमी का गला काट देते हैं, देते हैं ना, बक्से में बंद कर दिया और ताला दिला दिया, और फिर अंत में अरे बेटा आ जाना तो देखा। तो यदि एक मैजिशियन ऐसा कर सकता है तो मैजिशियनों का मैजिशियन भगवान, सुनो मैजिशियन का मैजिशियन कौन है, भगवान है। जो ब्रह्मा जी मैजिशियन है, शंकर हैं, इनको भी बनाने वाले हैं, योग माया के भी मालिक है। ये विश्व ब्रह्मांड को कैसा अजीब बनाया है, इसमें प्रवृत्ति कैसे दी, और सत्य में सत्य की भावना कैसे करा दी, ये असत्य है ना, ये कितना बड़ा भारी मैजिक है। इस मैजिक को यदि समझना है तो उसको प्रसन्न करना, कैसे प्रसन्न करेंगे, उसी का नाम आया, और नहीं तो इस मैजिक में फंसे हुए ही उसी को सत्य मान करके हम सब सत्य भ्रष्ट होकर के जन्म जन्मांतर में दुख में पड़ेंगे। इसी जन्म में भी दुख होना पड़ेगा, अगले की तो बात ही क्या।
अच्छा, ये दृष्टांत से भगवान के शरीर छोड़ने वाली बात है,
उसके द्वारा समझाया कि भगवान ने योग माया के प्रवास में वहां पर वो कुछ हुआ ही नहीं, भगवान सब शरीर ही जैसे शरीर थे जा रहे हैं, शंकर और ये ब्रह्मा इत्यादि सौ स्थिति का करेंगे। देवता लोग तो देखा ये ज्योति के रूप में जा रहे, ज्योति के भीतर में जो श्याम सुंदर का रूप है उसको लक्ष्य नहीं कर सके, और ब्रह्मा और शंकर ने देखा, और ऐसे जो नारद इत्यादि थे हाथ जोड़ करके फूलों की वर्षा कर रहे हैं, और साधारण जो मूर्ख लोग हैं उन्होंने देखा जैसा है ये तो कुछ नहीं, ये तो ये पड़े हुए हैं, भगवान की लीला में कैसे कैसे अधिकारी लोग कैसे कैसे रुचि। इसलिए इसको समझ बुझ करके भगवान का कुछ भजन करना चाहिए, देखिए झूठ नहीं समझना चाहिए, ये बल्कि झूठ ये जगत खंड है, जिसको हम चाहते हैं ना, जैसे इसको विलास या भोग कहते हैं संसार के, कब के लिए क्षणिक, उससे यदि सुखी होता है तो फिर उसमें दुख क्यों होता है। यदि घी खाने से ही सब कुछ हो जाता तो घी 1 किलो खा लो तो देखो तो मर जाएगा। जिसको हम सुख कहते हैं उसे थोड़ी सी सीमा से छोड़ करके और ज्यादा टाइम लगा लो, देखो जो उसी में हम मर जाएंगे। इसलिए जगत के लिए सब चीजें हैं, ये एक योग माया का महामाया का ये स्वप्न जैसा ये सब कुछ पता है। मैं कौन हूँ ये भी कुछ ठीक नहीं लगता। इसलिए भगवान हमारे हैं उनके प्रति किस प्रकार से प्रेम कुछ करें, इसके लिए कुछ कुर्बानी करनी पड़ती है। क्या करना है बिना त्याग का? समय बहुत थोड़ा है, कब मृत्यु हो जाए कोई ठीक नहीं। कोई गारंटी है इस जीवन का? कोई गारंटी नहीं। हम लोग सब सोच करके भूत करके सब संसार से निकल करते हैं। अगर नहीं आते ना तो हम संसार में इधर उधर में फंस जाते, दूसरों को निकाल नहीं सकते थे, हमारी बातों का उतना प्रभाव नहीं होता। हमने विचार किया मुख्य जन्म मिला, ब्राह्मण कुल में जन्मा, पढ़ा लिखा और आखिर ये समय क्या कर रहा हूं? बिजनेस कर रहा हूं ये तो बनियों का काम, ब्राह्मणों का तो काम नहीं। ब्रह्मों को जानना है काम, जगत में रियलिटी क्या है ये तो कुछ आया। तो ये किसी इसी तरह से हमारा जन्म चला जाएगा नौकरी चाकरी करने में। साथ ही साथ में मैंने रिजाइन दी, ज्ञान दे सके नोटिस नहीं के पास अध्ययन करने लगा उनकी शिक्षा देखते देखते धीरे 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 एकदम विश्वास होता चला गया। फुल कॉन्फिडेंस, इसलिए ये सब चीजें परमार्थ और ये सब चीजें केवल कहने के लिए ही नहीं है। किसने रियल नहीं होती तो भीष्म पितामह कहाँ, ब्रह्मा कहाँ, नारद कहाँ, प्रहलाद जी कहाँ, इस जगती में भी तुलसीदास सूरदास मीराबाई लाखों भक्त लोग हो गए और अभी तक ये सब विकास नहीं। कुछ कहने चाहिए धूप मुझे बल्कि धूप ये
परिवार
इसीलिए आवश्यक है कि उसी ये शैडो है और कुछ शिक्षा के लिए। यदि शिक्षा इससे लेते हैं तो ठीक, और शिक्षा नहीं लेते हैं तो कैसे। जैसे कानून की पुस्तकें, जैसे न्यूटन ने एक थ्योरी निकाली, क्या निकाला? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकाला ना। उसके पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था या नहीं था? हमारे ऋषि लोग इसको जानते थे कि नहीं? स्वभाव रूप में था और हमारे ऋषि लोग भी जानते थे ना? पहले कितने विमान और कितने क्या क्या ये सब बने हुए थे, मन से वो सब कुछ कर लेते, जाओ तू पेड़ हो जाओ, राय है कि नहीं? तुम अंत हो जाओ, तुम स्त्री बन जाओ। शंकर जी ने एक राजा को जो बिना परमिशन के घर में आ रहा था, अरे तुम स्त्री बन के स्त्री बन गया, बड़ी मुश्किल से फिर उसको पुरुष बना, आधा पुरुष और दिन में पुरुष रात में स्त्री बन गया। तो क्या कर रहा था? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये तो पहले भी था। उन्होंने अंग्रेजी में थोड़ा सा लेकर के वेदों में से लेकर के थोड़ा सा दे दिया, पाश्चात्य जगत में वाहवाही हो गई और अभी तक उस थ्योरी को हम प्रमाणित मानते हैं। व्यास जी ने, नारद जी ने, ब्रह्मा जी ने ये शास्त्र लिखा ना, उनसे भी अधिक चीजें इसमें हैं और आजकल उसी अवलंबन करके ये साइंस उन्नत कुछ हो रहा है, किंतु हम ऐसे दुर्भाग्य भी हम चरवाक पंखी हैं, इसलिए चरवाक ऋषि के जो जो पथ है ना उस एट ड्रिंक कैन बी मेरी बस। किंतु उसका नतीजा क्या होगा इस पर हम दुर्भाग्य, इसलिए हमने भगवान की तरफ प्रार्थना और कुछ ना हो। हाँ जो करते ये सब प्रार्थना करनी चाहते हैं, मैं तुम्हारी हम तुम्हारी की बात ही करना इतना तो करते हैं। न जाने कैसे मृत्यु हो हमारी तो ठीक है, प्रभु आप हमको अकाल मृत्यु इत्यादि से बचाए। हम यदि मरे भी, मरना तो जरूर है, तो सुख से कितना तो कष्ट हमारी सदगति, हम तो ये नहीं जानते हैं ये हमारी गति सदगति किसको करते हैं, आगे करके प्रार्थना से करते हैं। जो विश्व ब्रह्मांड का सृजन करता है वो क्या हमारे ऊपर में दया नहीं कर सकता? हम जो प्रार्थना करते हैं वो सुनता है कि नहीं? जरूर सुनता है, हम उसको देखते नहीं। बस ये गिरिराज गोवर्धन ने लाखों लोग परिक्रमा कर रहे हैं वृंदावन में, देखा नहीं? बड़े बड़े धनी घरों के राजा वहां पर भरतपुर का और कहां के सब लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही कर रहे हैं वो, ना ऐसा कर रहे हम लोग किस लिए कर रहे हैं? बड़े बड़े संत लोग भी यहां पर परिक्रमा कर रहे हैं, क्यों? वो सुनते हैं, इसलिए भगवान जी हैं। सभी लोग मिल करके को भगवान का भजन करें, संसार में जो कर्तव्य है उसको भी पूरा करते हुए चलें। एक दिन ऐसा मालूम पड़ेगा जिस भगवान की सेवा ही हमारा पर्व। हरे हरे बोल
नारायण महाराज की।
हरे कृष्ण का जय हो।
उनको ले गए थे मथुरा, आज पता नहीं कहाँ था जी साहब को फिर ले जा रहे मथुरा, आज कभी मैसेज हो गया।
कल मैंने कुछ सोचा नहीं था कि उससे क्या बोलूं।
महाराज इतनी बढ़िया क्लास दी आपने, इतनी बढ़िया, मैं तो उसको अब भी उठाता रहा, वो चाहती थी पर नींद पे काबू नहीं पाया था, उसने अलार्म भी लगा के रखा था, नींद में नहीं था प्रॉब्लम। और नवीन कृष्ण जी का कहना है कि अगर वो 5-6 बार आपको मिले तो उसमें परिवर्तन आएगा, क्योंकि एक चीज़ तो है उसमें कि वो कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लेती है, मानती है, और भक्ति करना ये भी मानती है, लेकिन भौतिक इच्छाएँ इतनी ज़्यादा है, और अब भौतिक इच्छाएं कभी नहीं किया जिंदगी में, हर जगह तो उसको
आपको समय आ रहा है वृद्धावस्था का,
बीमारी बढ़ने जा रही। महाराज मैं कुछ कुछ घबरा रहा हूँ, कैसे आपको इस समय तक मुझको भगवान ने बहुत जबरदस्त स्वतंत्रता दे रखी है, बच्चे दोनों हॉस्टल में, पत्नी के पास अपनी कार्य अपने जीवन की हर व्यवस्था को उसमें ठीक रखी है, मेरे घर में दूध भी बाहर से दूध वाला के दिया जाता है, जो आटा दाल चीनी वगैरह पीने वो टेलीफोन पे आ जाता है, सब कुछ मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। अगर बिजली खराब है तो टेलीफोन कर देते हैं बिजली वाला आ जाएगा, नल खराब है तो टेलीफोन कर देंगे नल वाला आ जाएगा, किसी बच्चे को पढ़ाना नहीं पड़ता, किसी को स्कूल नहीं ले जाना पड़ता, और मैं सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक अपने प्रचार और घर से नहीं जाना पड़ता, मुझे दूसरा कोई ऑफिस के काम के अलावा कोई काम नहीं है। अब बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं, धीरे धीरे हो सकता है कि उनको हॉस्टल चला के वापस घर ले आया जाए, जब वो घर आ जाएंगी, अब 2-3 दिनों के लिए घर आएंगे, स्कूल वालों ने काम दिया एक मॉडल बनाओ कि सड़कें हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, उसका एक मॉडल बनाओ। हम उसको मॉडल बनाने के लिए बल्ब लगाने में इलेक्ट्रिसिटी लगानी, पर उन्होंने मुझको कहा कि कुछ कराओ, मैंने थोड़ी सी मदद की। मैंने कहा अगर ये लोग घर आ गए और ये कचड़े रोज पड़े रहे तो मैं तो फिर मुझे तो इसमें टाइम लगाना पड़ेगा, मुझे बड़ा दुष्कर लग रहा है और अटपटा सा है। और उधर वो जो है इस समय हमारा जिनके बच्चे हैं और सुबह बेचारे 6:30 जरूर उठते हैं, क्योंकि बच्चों को बस से चलाना होता है भेजने के लिए स्कूल, और मेरी वाइफ को वो कोई चिंता नहीं थी, 9:30, 9:30, 8:30 इसमें रोज रात को पिक्चर देखते हैं, वो 12 बजे तक पिक्चर देखते हैं। तो अब धीरे धीरे इनकी तबीयत भी खराब होने जा रही है।
कोई चिंता मत कीजिए,
मुझे तो डर लग रहा है कि मैं और फिर उलझे ना जाऊँ घर में,
अपना भजन करते चलिए,
मुझको तो भजन ही करना। अच्छा अब दूसरी बात ये आ रही थी कि यहाँ से छोड़ के मठ निकले हैं, कि ये तो कृष्ण जी के पास ये लोगों ने आपको रखा, ये किया सेवा तो ये कर रहे हैं और असली फायदा मैं उठा रहा हूँ, और ये सारी व्यवस्था मैंने कर भगवान ने कर दिए थी, क्योंकि खुद ऋषि बुद्धि राजा ऋषि जैसे बैठ नहीं पाए और ना ही वो।
अच्छा तो फिर अभी कथा कर लेना और वो समान प्रश्न ले जाना पत्नी से, या मैं ही देखूंगा कभी हो गया तो दो एक दिन के लिए
फिर आ
जाऊंगा
मैं इनको सूचित, आप लोगों को सूचित कर दूंगा। ताज कॉलेज पहुंचती है,
ताज में वहां से रात को आती है,
कैसे
पौने आठ बजे चलती है,
चलती है
तो
आठ नौ
यहाँ पे दस
बजे
तो आप कहोगे तो लेने आ जाएंगे
आप लोग तो बीच बीच में आप तो जाएंगे ना महीने दो महीने में एक बार तो जाते ही
नहीं। मैं आपके लिए लगाऊंगा, मैं हम जो अपने ग्रुप के साथ जाते हैं वो जाते हैं वो कहानी हो जाती है। अभी तो मैं सोच रहा हूँ रामनवमी के बाद आऊंगा मैं, आप मत से मिलोगे, मैं तो आऊंगा
इन लोगों रहूंगा या वृंदावन
इन लोगों के मायापुर से लौट के आने तक मैं सोच रहा हूँ एक बार में बीच में आऊंगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी चले आएंगे फिर रहते दो महीने के लिए वो बाहर जा रहे हैं, तो गुरु महाराज जी चले आएंगे तो फिर जब वो यहाँ होते हैं तो फिर हम यहाँ पे एक किस्म से बिजी हो जाते हैं उनके साथ गुरु के संग, सब टाइप का आज इधर प्रोग्राम उधर जाना, फिर वो चले आएंगे तो फिर मैं बीच में
आप लोग
मेरी कोशिश हो
जाए रामनवमी के बाद आप लोग वहाँ से आकर के ना मुझे खबर देंगे
नहीं होगा ना चलेगा,
या तो आप लोग पत्र दे देंगे हमें तो फोन से बात कर हम लोग आ गए और
आप भी फोन लगवाइएगा,
फोन लगाने से
आपको नहीं देंगे बातचीत करने के लिए
बहुत
सारी
है
ऐसा महाराज,
वैसे तो हमको फुर्सत नहीं मिलती है सब आते रहते हैं लोग
एकदम
ला रहे हैं करके इनको खूब आराम से भजन करते हैं और हमको भी स्मरण करना ठाकुर जी को भी स्मरण करना और फिर हो जाए और जो जो हमने कहा है उसको कल रात में उनकी पत्नी के लिए मैंने जो बतलाया ना
वो भी बतलाया था बहुत जबरदस्त भात की क्लास बहुत अच्छी लगी, जो बोलती बहुत अच्छी लगी। चले के इसको
एकदम प्रारंभ से विमुखता से लेकर अंतिम तक है गोपी भाव तक जो कुछ भी पूछना है जो कुछ भी जानना है सब वो जब हो जाएगा ना कभी बात आई देखिए
Thank you. Thank you. Yeah.